महान परमहंस परिव्राज गचारी अस्तोत्र सस्त्री श्रीमलिद्यवाइंग्रे अभयतरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडराचार्य शिवरम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सुभद्रा जगन्नाथ वंदे सुभद्रा की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री विश्वरूप महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद और ग्लोरी सुचमिंड बोलीज और ग्लोरी सुचमिंड बोलीज और ग्लोरी सुचमिंड बोलीज और ग्लोरी श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि आज बहुत विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है। क्या है, कौन सा है? प्रभुपाद ने संन्यास लिया, एक तो प्रभुपाद ने संन्यास लिया और दूसरा है चतुर्मास शुरू हो रहा है। खैर वो तो कोई विशेष बात उतनी विशेष बात नहीं। और क्या है, विश्वरूप विश्वरूप का तुरगा नहीं, विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण किया। विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया और प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया। ठीक है, तो अभी कम लोग हैं तो मैं प्रभुपाद लीला में से कुछ पाठ करूंगा ताकि बाद में जब हम श्लोक पाठ करेंगे तो ज्यादा लोग आ जाएं। तो ये घटना जो प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया था, तो इसमें प्रभुपाद पुस्तक से मैं कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ और कुछ थोड़ा चर्चा करूंगा। एक रात्रि अभय ने चमत्कारी सपना देखा। एक रात्रि, ये किस समय की बात है, जब प्रभुपाद वृंदावन में थे, जब प्रभुपाद वृंदावन में थे और वृंदावन से दिल्ली आते जाते रहते थे। तो एक रात्रि प्रभुपाद ने चमत्कारी सपना देखा, वही सपना जिसे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में अनेक बार देखा था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरसी आकर खड़े हो गए, ठीक वैसे ही जैसे अभय जानते थे कैसे ऊंचे विद्वान सन्यासी सीधे कृष्ण के निजी पार्षदों में से उतर करके आए। उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत किया कि वो उनके पीछे पीछे आए। उन्होंने बारंबार पुकारा और चल दिए, वे अभय को सन्यास ग्रहण करने के लिए कह रहे थे। उन्होंने पुकारा, आओ सन्यास ग्रहण करो। अभय आश्चर्यचकित होकर जाग पड़े। उन्होंने इस आदेश को श्रील भक्ति सिद्धांत सरसी द्वारा दिए गए पहले वाले आदेश का अन्य रूप माना, जिसे उन्होंने कलकत्ता की पहली भेंट के समय दिया था। कलकत्ता में सबसे पहली भेंट कब हुई थी, 1922 में सबसे पहली भेंट है ना। और सबसे पहली भेंट में ही भक्ति सिद्धांत सरसी ठाकुर ने प्रभुपाद को आदेश दिया। कितना आश्चर्य, बिना परिचय के, जब प्रभुपाद का परिचय नहीं हुआ था है? तो बिना परिचय के प्रभुपाद को उन्होंने आदेश दिया, क्या तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, चैतन्य महाप्रभु संदेश का अंग्रेजी भाषी जगत में प्रचार क्यों नहीं करते। देखो कोई बिना परिचय के कोई ऐसी बात बोल सकता है ना। तो ये जो है एक बहुत आश्चर्य की बात थी, तो जिसे उन्होंने कलकत्ता के पहले भेंट के समय दिया था और इसी आदेश को एक पत्र द्वारा दोहराया था 1936 में। 1936 में जब भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा था, तो उसके कुछ दिन पहले ही प्रभुपाद का पत्र आया था। तो प्रभुपाद को भी कुछ सूचना नहीं थी कि शरीर छोड़ने वाले हैं,
प्रभुपाद ने पत्र लिखा था कि मेरे लिए कोई सेवा है क्या, आपके साथ तो बड़े बड़े सन्यासी हैं जो आपकी सेवा में लगे हैं, मैं गृहस्थ हूँ, अपने व्यापार में लगा हूँ, तो मेरे लिए कोई सेवा है क्या। तो उन्होंने पत्र का उत्तर लिखा था, है ना, और क्या लिखा था देखिए, अंग्रेजी प्रचारक बनकर पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। तो उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लेने की बात नहीं कही थी, ना तो सबसे पहले भेंट में संन्यास लेने की बात कही, और जब शरीर छोड़ने वाले थे उस समय भी संन्यास लेने की बात नहीं कही, लेकिन संकेत तो है, संकेत तो था, है? क्योंकि क्या, अंग्रेजी प्रचारक बनकर पूरे पाश्चात्य जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो, है ना। तो यहाँ संकेत है, संन्यास किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए था, अन्यथा गुरु क्यों संन्यास ग्रहण करने के लिए कहते। ये जब शरीर छोड़ चुके भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो इस पुस्तक के अनुसार प्रभुपाद को कई बार सपना आया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं। आगे, आदर्श वैदिक सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ देना चाहिए और एक विरक्त साधु या सन्यासी हो जाना चाहिए। घर छोड़ने का मतलब जरूरी नहीं है कि घर मतलब शारीरिक रूप से छोड़ा जाए। अगर घर में पत्नी और बच्चे अगर कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हैं तो वो घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तो जीवन भर कोई व्यक्ति घर में भी रह सकता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद मतलब यहाँ जो बताया जा रहा है वो यह कि घर की जिम्मेदारियों से जो है छुट्टी लेकर के अधिक से अधिक समय अपना कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। आगे, इस तरह से जीवन के शेष दिन भगवान के कीर्तन श्रवण तथा गुणों के प्रचार में बिताना चाहिए। अभय ने तर्क किया कि उनके गुरु ये कह रहे हैं अब संन्यास ले लो और तुम इस लक्ष्य को पूरा कर सकोगे, पहले इसके लिए समय उपयुक्त नहीं था। इससे क्या पता चलता है कि प्रभुपाद का पूरा जो जीवन था वो पहले से सब निश्चित हो चुका था कि किस समय उन्हें क्या करना है। जैसे कोई फिल्म होती है ना, तो पहले से बन चुकी है फिल्म, है ना, बाद में सब लोगों के सामने दिखाई जाती है कि भाई ये हेलेन पहले से सब बन चुकी है ना, उसका जो कथानक है वो भी बन चुका है, उसके जो डायलॉग्स हैं वो सब बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। तो प्रभुपाद का जीवन एक इस प्रकार, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने जो है प्रभुपाद को भेजा था तो उनके जीवन की प्रत्येक घटना पहले से निश्चित हो चुकी है कि किस समय को क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद यहाँ लिखा है, आगे, अभय ने गंभीरता पूर्वक विचार किया, संन्यास ग्रहण करके एक वैष्णव अपने तन मन तथा वाणी को पूर्णतया भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है और अन्य सारे कार्यों को त्याग देता है। ये सब तो अभय पहले से कर रहे थे, किंतु उन्होंने अनुभव किया कि यदि संन्यास ग्रहण कर लें तो अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे। क्यों, संन्यास ग्रहण करने से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेंगे, क्यों, सब लोगों की दृष्टि में ये बात जो है जम जाएगी, सब लोगों की दृष्टि में ही जम जाएगी कि भाई इनका और कुछ काम नहीं है, इनसे कुछ और बात नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। सन्यासी को देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं भाई ये इनसे हमें कुछ और बात करनी नहीं है, है ना। तो ये जो है लोगों की नजरों में फिर क्या हो जाता है, एक बड़ी सुरक्षा हो जाती है ना। तो यहाँ लिखा है, और उस महान कार्य के लिए इससे भी अधिक प्रेरणा प्राप्त कर सकें, अपने को ही प्रेरणा मिलेगी कि मैंने संन्यास लिया, संन्यास दंड लिया है, है ना। जो अभी आगे पड़ा था, वैदिक आदर्श तथा पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत उदाहरण यह था कि यदि कोई प्रचार तथा उपदेश आंदोलन चलाना चाहता है, प्रचार और उपदेश आंदोलन चलाना चाहता है तो उसे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पहले तो अभय ने प्रतिरोध किया था, लेकिन अब वे पुनर्विचार कर रहे थे। पहले प्रतिरोध किया था, क्यों, भौतिक आसक्तियां, तो भौतिक आसक्तियों के कारण उन्होंने प्रतिरोध किया था। तो ऐसा सोचते थे प्रभुपाद कि भाई घर में रह करके परिवार में रह करके ही पूरे विश्व में फैलाया जाए ये आंदोलन, है ना। लेकिन अब वे पुनर्विचार कर रहे थे, वे अपने गुरु भाई केशव महाराज के पास मथुरा गए, जिन्होंने बल दिया कि अभय शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर लें। उनके गुरु भाई कौन है, केशव, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, ने यहाँ केशव महाराज लिखा है संक्षेप में, केशव महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी। तो मथुरा में केशव गौड़िया मठ, तो वहां पर तो उन्होंने भी बल दिया कि संन्यास ग्रहण कर लें। बाद के वर्षों में प्रभुपाद संस्मरण सुनाते, मैं वृंदावन में अकेले रहकर लेखन कार्य कर रहा था। मेरे गुरु भाई ने जोड़ दिया, भक्ति वेदांत प्रभु तुम अवश्य सन्यासी बनो, सन्यास आश्रम स्वीकार किए बिना कोई भी धर्मोपदेशक नहीं बन सकता। ये तो मेरे गुरु का इस गुरु भाई के माध्यम से मुझ पर जोर था, इस तरह ना चाहते हुए मैंने सन्यास स्वीकार किया। वृंदावन में औपचारिक सन्यास समारोह के पश्चात, यहाँ वृंदावन लिखा है लेकिन वो है मथुरा, मथुरा केशवगौड़िया मठ में मैंने औपचारिक सन्यास समारोह के पश्चात अभय का नाम अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी पढ़ा। हरिओम हरिओम। लेकिन उनकी मूलभूत समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। वे कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य करना चाहते थे लेकिन बहुत थोड़े से लोग सुनना चाहते थे। उनके सन्यासी बनने से इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कथा तो बहुत लंबी है तो मैं कुछ इसमें से सुनाना चाहता था। तो इसमें एक संस्मरण कृष्णदास उनके प्रभुपाद के गुरु भाई थे ना, उनका नाम क्या था, कृष्णदास महाराज। तो वो बहुत अच्छा गाते थे। तो जब प्रभुपाद संन्यास ले रहे थे तो वो हरि नाम कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय जो कोई दूसरे भक्त थे जो संस्कृत के मंत्र उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने उनको मना किया कि अभी कीर्तन बंद कर दो, कृष्णदास महाराज को जो है इशारा किया कीर्तन बंद कर दो। और प्रभुपाद संन्यास दीक्षा ले रहे थे लेकिन प्रभुपाद ने उनको इशारा किया मतलब हरिनाम कीर्तन बना करो करो कीर्तन। तो कृष्णदास महाराज जो है उस समय उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो भक्ति वेदांत जो प्रभु ये संन्यास जो ले रहे हैं ये बहुत बड़ा काम करेंगे, ये कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। हाँ अकिंचन दास बाबा जी
महाराज
है ना। तो वो जो है उन्होंने ऐसा बताया है ना। श्रील प्रभुपाद संन्यास ग्रहण महामहोत्सव की अब विश्व रूप में संन्यास लिया, ये भी मैं कुछ पढ़ के सुनाऊंगा चैतन्य भागवत से। तो चैतन्य महापुरुष में बहुत छोटे हैं, जब विश्व रूप में संन्यास लिया था तो गौरांग बालक, माता पिता का डर नहीं मानते, बहुत शैतान है। गौरांग बालक जो है बहुत शैतान है, माता पिता का डर नहीं मानता है लेकिन बड़े भाई विश्वरूप को देखकर के विनम्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म से विरक्त थे, विरक्ति का जो है बहुत प्रभाव था इनके ऊपर, विश्वरूप के ऊपर है ना। तो विरक्ति, इनकी विरक्ति के प्रभाव से गौरांग बालक जो है इनसे जो है मतलब इनके आदेश को स्वीकार करता था, इन माता पिता के आदेश को नहीं मानता था। जन्म से विरक्त थे, समस्त सद्गुणों के खान थे, सर्वशास्त्रों की व्याख्या में विष्णु भक्ति का बखान करते थे, उनकी व्याख्या को खंडन करने की शक्ति किसी में नहीं थी। कानों से मुख से मन से यहां तक कि सब इंद्रियों से श्री कृष्ण भक्ति के बिना वे और कुछ ना बोलते थे ना सुनते थे। विश्वरूप अपने छोटे भाई विश्वंभर की विचित्र चेष्टाओं को देखकर मन में विस्मित हो जाते, सोचते थे कि यह बालक कभी भी प्राकृतिक बालक नहीं है, इसका रूप सौंदर्य आचरण ऐसा है जैसे बाल गोपाल का था। विश्वरूप सोचते हैं ये जो अलौकिक लीलाएं निरंतर करता है श्री कृष्ण ही इसके शरीर में व्याप्त होकर ये लीलाएं करते हैं, मैं तो ऐसा समझता हूं। विश्वरूप तो ये जो है क्या वात्सल्य भाव, स्नेह भाव, स्नेह भाव में विश्वरूप भी चेतन ये बालक गौरांग को कृष्ण नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या मान रहे हैं, इस बालक के शरीर में कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं है ना। इससे क्या होता है, वात्सल्य पुष्ट होता है। अगर मान लें कि कृष्ण है स्वयं तो फिर वात्सल्य भाव कैसे होगा। तो विश्वरूप ऐसा मन में सोचते रहते थे, किसी के सामने इस रहस्य को खोलते नहीं थे, किस रहस्य को, गौरांग के रहस्य को नहीं खोलते थे। अपने काम में लगे रहते थे, निरंतर वैष्णवों के साथ उठते बैठते, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा में रंगे रहते। जगतवासी लोग तो धन पुत्र के रस में पागल हो रहे थे, वे किसी वैष्णव को देखते उसका मफर उड़ाते थे। विष्णु भगवान ये सब देखकर बहुत दुख पाते थे, जगतवासियों का हाल चाल नहीं करते, उन्हें कहीं भी अपना मनोभीष्ट कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलती थी। गीता भागवत को जो अध्यापक पढ़ते पढ़ाते थे उनकी जिह्वा पर भी कृष्ण भक्ति परक व्याख्या नहीं आती थी। कुतर्क शास्त्र विरुद्ध, कुतर्क शास्त्र विरुद्ध युक्तियों को प्रचार कर जो मरते थे, भक्ति नाम की कोई वस्तु है संसार में वे नहीं जानते थे। अद्वैत आचार्य आदि जितने भक्त थे वे जीवों की कुबुद्धि देख देख कर रो उठते थे और विश्रुप मन मन में अति दुख पाते और यही सोचते इन कृष्ण भैरमुख लोगों का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा, वन में चला जाऊंगा, हमेशा मन में सोचते हैं। उषा काल में, उषा काल मतलब प्रातःकाल से पहले उषा काल होता है, उषा काल में विश्रुप गंगा स्नान कर श्री अद्वैताचार्य की सभा में चले जाते हैं। वहां पर क्या होती थी, कृष्ण कथा होती थी। उषा काल में स्नान करके अद्वैताचार्य की सभा में चले जाते, सब शास्त्रों की व्याख्या में कृष्ण भक्ति का निरूपण करते, इसे सुनकर अद्वैताचार्य सुख में हुंकार करने लगते थे, सुख में हुंकार करते थे अद्वैताचार्य। पूजा को छोड़कर विश्रुप को भुजाओं में भरकर सब वैष्णव आनंद पूर्वक हरी हरी बोलते थे, कृष्ण आनंद में भरकर भक्तगण शेर की भांति गर्जना करते थे। विश्वरूप की व्याख्या सुनकर के भक्तों को बहुत बल मिलता था, तो शेर की तरह गर्जना करते थे, उनके चित्त में समय कोई दुख चिंता ना रह जाती थी। विश्वरूप को छोड़कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता था और विश्वरूप भी अपने घर नहीं आते थे। जब रसोई तैयार हो जाती तब माता सब्जी विश्वंभर को बुलाकर कहती, बेटा जाकर अपने बड़े भाई को बुलाकर ले आ। सच्ची माता, माता का आदेश पाकर विश्वंभर श्री अद्वैत की सभा में भाई को बुलाने के बहाने आते थे। छोटा बालक है, नग्न है, गौरांग, शरीर में धूल लपेटे हुए और आ गया अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए। एक दिन विश्वंभर ने आकर वहां वैष्णवों को देखा, परस्पर कृष्ण कथा कर रहे थे। अपनी कथा को सुनकर गौर सुंदर ने सबकी तरफ बड़े मनोहर शुभ दृष्टि डाली, मेरी कथा चल रही है, बहुत खुश हो बालक बहुत खुश हो रहा है, सबकी तरफ मनोहर दृष्टि डाली। श्री गौर के प्रत्येक अंग पर अद्वितीय लावण्य की सीमा विद्यमान थी। लावण्य, लावण्य का मतलब क्या, लवण से, यानी नमकीन, नमकीन अपन शरीर बहुत नमकीन है ना, एक माधुर्य होता है एक लावण्य होता है, रूप लावण और रूप माधुर्य, माधुर्य का मतलब मीठापन है तो लावण्य का मतलब नमकीनापन, नमकीनापन है ना। तो जब ऐसा शरीर है खूब धूल धूल लगी हुई है तो उसमें जो है नमकीनापन है। तो अद्वितीय लावण्य की सीमा विद्यमान थी, उनके एक नाखून की छटा से करोड़ों करोड़ चंद्रमा की भी उपमा नहीं दी जा सकती। शरीर तो एकदम धूल से भरा हुआ है और नग्न है, ये नाखून में जो है, कितना सौंदर्य है, करोड़ करोड़ चंद्रमा भी बराबर नहीं होंगे। इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, पूरा शरीर धूल से धूसरे, और हंसकर अपने बड़े भाई से बोले, भैया भोजन के लिए घर चलो। जैसे बच्चा हट जाए, कोई मतलब नहीं किसी से, चलो आदेश दिया अपने बड़े भाई को, चलो भोजन के लिए घर चलो, माता बुला रही है। इतना कहकर उन्होंने भाई विश्वरूप के दुपट्टा को पकड़ा और साथ ले चले। जैसे अपनी गाय को जो है कोई रस्सी पकड़ करके ले जाए। आगे की और पीछे की कोई बात ही नहीं है, बस अपनी गाय है तो अपने भाई का दुपट्टा पकड़ करके चले। श्री गौर सुंदर के उस मोहन रूप को समस्त भक्त देखकर जड़वत हो गए, जड़ जड़ समझते हैं, चेतन नहीं, जड़ जड़वत हो गए और इनको देखने लगे। भक्तों की ऐसी अवस्था हो गई मानो उनकी समाधि लग गई हो और कृष्ण कथा भी किसी के मुंह से ना निकल पाई। श्री भगवान के दर्शन करने पर भक्तगण स्वाभाविक मोहित हो जाते हैं, ना पहचाने तो भी वो आकर्षण तो भगवान का पड़ता ही है भक्तों के। इस प्रकार अद्वैताचार्य की सभा में सब भक्तों के चित्त को मोहित कर विश्वंभर अपने बड़े भाई विश्वरूप को साथ लेकर अपने घर चले आए। और विश्वरूप भी नाम मात्र को घर जाते थे, गए झट खाया और फिर कहां, अद्वैताचार्य की सभा में। ये निरंतर विश्वरूप को संसार सुख जरा भी अच्छा नहीं लगता था, निरंतर कृष्ण कीर्तन आनंद में डूबे रहते, घर आने पर भी गृहस्थ की भांति कोई व्यवहार न करते, निरंतर मंदिर में ही बैठे रहा करते। घर में भी मंदिर था तो मंदिर में बैठे रहे थे। माता पिता भी स्वरूप जी भाई की जब कभी बात करते तो सुन करके बहुत दुख पाते, मेरे भाई की चर्चा चल रही है तो बहुत दुखी होते। जिस रूप मन में यही सोचा करते मैं संसार को छोड़ जाऊं, मैं तो मन में चला जाऊं, रोज यही बात उनके मन में आती थी। बता दे हुसैन, ईश्वर के मन की बात ईश्वर ही जान सकते हैं। अतः कुछ दिन बाद विश्वरूप ने संन्यास धारण कर गृह त्याग दिया, यानी आज के दिन अनंत भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के पथ पर चल दिए। जगत में वे श्री शंकरारण्य नाम से विख्यात हुए। शंकरारण्य, यहां स्वामी गोस्वामी नहीं, अरण्य अपने आप में उपाधि है, श्री शंकरारण्य। श्री शंकरारण्य नाम से विख्यात हुए। जब विश्वरूप गृह त्याग कर चले गए तब श्री सती जगन्नाथ का हृदय ग्रह अग्नि से जलने लगा। बंधु बांधवों सहित जोर जोर से रोने लगे। कौन? सती और जगन्नाथ। श्री गौतम तो भाई विश्वरूप के गृह में बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। इस ग्रह का वर्णन मुक्त नहीं हो सकता। जगन्नाथ मिश्र का घर पास पड़ोस क्रंदनमय हो था, हर तरफ रोने की ध्वनि छा गई। विश्वरूप के संन्यास को देखकर श्री अद्वैताचार्य और सब भक्तगण बहुत रोए, बहुत रोए। इस समाचार को जिसने सुना, नवद्वीप के छोटे बड़े सब व्यक्ति बहुत दुखी हुए। ऐसा कोई व्यक्ति ना रहा जो विश्वरूप के संन्यास को सुनकर दुखी ना हुआ हो। सती जगन्नाथ का तो हृदय फटा जा रहा था। हाँ विश्वरूप, हाँ विश्वरूप, पुकार कर चिल्ला रहे थे। पुत्र शोक में मिश्र जी व्याकुल हो गए। सब बंधु बांधव उनको सांत्वना देने लगे। सब कहने लगे, मिश्र धीरज धारण करो, इतना दुख क्यों मान रहे हो? इस महापुरुष ने तो पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। जिस कुल में एक पुरुष भी संन्यास धारण कर ले उसके तीन कुलों का श्री वैकुंठ में वास होता है। आपके पुत्र ने तो ऐसा शुभ कर्म किया है, उसका विद्याध्ययन सब सफल हो गया, आपको तो विशेष आनंद ही मनाना चाहिए। ऐसा कहकर सब श्री मिश्र के हाथ पांव पकड़कर बोले, देखो मिश्र जी, इस कुल का भूषण तो आपका विश्वंभर आपके घर में है। ये पुत्र आपके वंश की वृद्धि करेगा, इसके द्वारा आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। जिसके घर में विश्वंभर जैसा पुत्र है उसे करोड़ों पुत्रों से क्या प्रयोजन। इस प्रकार बंधु बांधव श्री जगन्नाथ मिश्र को समझाने लगे, किंतु उनका दुख जरा भी दूर न हो सका। जैसे तैसे कभी थोड़ा धैर्य धारण करते, फिर विश्वरूप के गुण याद आने से सब धीरज भाग जाता। मिश्र जी कहते, ये विश्वंभर पुत्र भी मेरा घर में रहेगा, कैसे रहेगा? ठीक है, वो पुत्र श्री कृष्ण दिया था, कृष्ण ले लिया, जो कृष्ण इच्छा होती वही होता है। जीव की स्वतंत्र शक्ति आधा तेर मात्र भी नहीं है। हे कृष्ण, ये शरीर आपको ही समर्पित है। इस प्रकार महाधीर श्री मिश्र ने धीरे धीरे चित्त वृत्ति को स्थिर किया। इस प्रकार नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न शरीर श्री विश्वरूप सन्यासी हो गए। जो व्यक्ति श्री विश्वरूप के संन्यास कथा प्रसंग को सुनता है, सुन रहे आप लोग, तो सुन लीजिए ध्यान से। जो व्यक्ति श्री विश्वरूप के संन्यास कथा प्रसंग को सुनता है उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके कर्म बंधन कट जाते हैं, उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। यशो नए विश्वरूप प्रभुर, यशो नए विश्वरूप प्रभुर संन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंदे कर्म फांस। श्री विश्वरूप संन्यास महामहोत्सव की जय। ये किताबें रख लो, ये जो श्लोक लिखा है बोर्ड में, वैसे तो रोज पाठ किया जाता है, सबको याद भी होगा वैसे भी, है ना? फिर भी मैं सोचता हूँ कि साथ साथ ही पाठ करें इसका, ठीक है? तो मेरे साथ ही आप लोग बोलिए और तीन बार हम लोग साथ साथ पाठ करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महागामी निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतम स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
चेतो दर्पण मार्जनम भव महान दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका विचरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मृता स्वागनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम भव महान दादामि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका विपरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
तो इस श्लोक जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है सब लोग पढ़ पा रहे हैं? सब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा है लेकिन समझ पाएंगे, कुछ समझ आएगा। तो इस श्लोक में आप देख रहे हैं कि सात कुल मिला के आठ पद हैं। सबसे अंतिम जो पद है वो है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब बात बताई गई है, जो मुख्य बात है वो ये बताई गई है, क्या परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते का मतलब है कि सर्वोच्च विजय, परम का मतलब सर्वोच्च, विजयते का मतलब विजयी होता है, विजय प्राप्त करता है, सबसे ऊपर विजय प्राप्त करता है, क्या श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन सर्वोच्च विजय प्राप्त करता है, विजय पे ये क्रिया है ना। हम कहते हैं विजय हो या विजय होती है, हम कुछ ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि विजय प्राप्त करता है, विजयी होता है ना। परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तन। तो इसके पहले सात पद हैं, तो ये क्रम से एक एक करके ये जो है घटनाएं हैं जो कि श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये क्रम तो हम इस तरह से भी अध्ययन कर सकते हैं, कई प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है इस श्लोक का। तो इस प्रकार का अध्ययन ये भी है कि ये क्रम से जो है हमें अलग अलग ये परिणाम प्रदान करता है ना। तो हम इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पद है वो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की सबसे पहली विशेषता क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करता है, मार्जन माने स्वच्छ करता है ना। चित्त क्या है, हमारा दर्पण है, हमारा चित्त दर्पण के समान है ना। दर्पण समझते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, शीशा दर्पण, है ना। तो रोज आप लोग दर्पण देखते हैं, है ना, अपना चेहरा देखते हैं, है ना। तो दर्पण को स्वच्छ करने की बहुत आवश्यकता है, अगर दर्पण को स्वच्छ नहीं किया तो उसका फिर कुछ भी मतलब नहीं होता दर्पण का, है कि नहीं। क्योंकि दर्पण में आपको अपना चेहरा देखना होता है, अगर दर्पण गंदा है और आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर वो दर्पण नहीं कहा जा सकता है ना। तो दर्पण को मार्जन करने की आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन चित्रूपी दर्पण को मार्जन करने के लिए क्या है, दर्पण को आप मार्जन करते हैं, साफ करते हैं किससे, गीला कपड़ा। तो जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये क्या है, एक गीला कपड़ा है जो आपके चित्र रूपी दर्पण को मार्जन करेगा, है ना। तो ये गीला कपड़ा है ना, लेकिन ये कैसा गीला कपड़ा है जो गंदा कभी नहीं होता, ऐसा आपको मिलेगा नहीं कोई भी कपड़ा। आप जो है गंदी चीज को गीले कपड़े से साफ करते हैं तो कपड़ा गंदा हो जाता है, उसको बदलना पड़ता है। लेकिन ये दिव्य ये इतना दिव्य है ये गीला कपड़ा कि चाहे जितना आप गंदगी साफ करो लेकिन ये गंदा नहीं होगा, ये गंदगी साफ कर देगा, है ना। तो श्री कृष्ण संकीर्तन और चित्त रूपी दर्पण हमारा कई जन्मों से गंदा है, हजारों करोड़ों जन्मों से गंदा है। तो अगर बहुत सालों से दर्पण गंदा हो तो बहुत मतलब उसमें धूल होगी, बहुत धूल होगी। आप गीले कपड़े से साफ करेंगे तो कपड़ा बहुत गंदा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये गीला कपड़ा जो कृष्ण संकीर्तन एक गीला कपड़ा है, ये ऐसा है जो कभी भी गंदा नहीं होता, और आप चाहे जितना आप साफ करें, बल्कि रोज आप साफ करें, अपने चित्र रूपी दर्पण को रोज साफ करें, क्योंकि चित्र रूपी दर्पण हमारा गंदा होता रहता है। जैसे दर्पण रोज धूल जमती रहती है ना, तो रोज भी साफ करने की आवश्यकता हो सकती है, हो सकता है रोज साफ ना करना पड़े। तो हमारा जो चित्र रूपी दर्पण है ये रोज गंदा होता रहता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है ना? और बहुत से ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पोस्टरों में लगे हुए हैं है? और बहुत सी बातें आवाजें भी ऐसी आती हैं, इंद्रिय तृप्ति की आवाजें, इंद्रिय तृप्ति के पोस्टर तो आंखों से भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे दृश्य कानों से भी बहुत सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं इंद्रिय तृप्ति की, जिनसे चित्त हमारा गंदा होता रहता है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की आवश्यकता है कि रोज आप जो है इसकी सफाई करें, जैसे आप शरीर की सफाई करते हैं रोज, है ना, और शरीर आपका रोज गंदा होता है। आप अपने कपड़ों की भी सफाई करते हैं, आपके कपड़े रोज गंदे होते हैं, है ना, तो उसके लिए साबुन की आवश्यकता है। तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो है ये एक ऐसा साबुन समझो या कपड़ा समझो, गीला कपड़ा समझो, इसकी हमेशा आवश्यकता है। लेकिन बस अंतर केवल यही है कि आप जिस साबुन से या जिस भी चीज़ से आप सफाई करते हैं तो वो फिर बाद में खत्म हो जाता है या गंदा हो जाता है, बदलना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा साबुन है या ऐसा कपड़ा है जो कि कभी गंदा नहीं होता, कभी बदलना नहीं पड़ता है? लेकिन लोग जो है, कई लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि नहीं, भगवान का नाम बहुत पवित्र है और हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत अपवित्र हैं। जैसे ऐसा ही लोग जब भोपाल ने विदेशों में इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाया तो भक्त लोग सड़कों में कीर्तन करते थे, तो चर्च से जो है एक पादरी बाहर निकला है और बड़े जो है मतलब एक तरह से मतलब डरते हुए तरीके से, डराने के लिए है, जैसे आप लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, ये भगवान का नाम इतना पवित्र है, ये नाम मत लो, ये नाम मत लो, है ना, नाम अशुद्ध हो जाएगा, नाम अशुद्ध हो जाएगा, है ना। उनकी बड़ी चिंता है कि भाई भगवान का पवित्र नाम अशुद्ध हो जाएगा, तो हम लोग बहुत अशुद्ध हैं। वो ईसाई लोग तो सब करते ही हैं ऐसे अशुद्ध कर्म, मांसाहार, व्यभिचार, नशा, ये सब करते ही हैं, तो वो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो हम इतना गंदा मतलब अपने चित्त को हम इतना गंदा कर रहे हैं तो भगवान का नाम जो है गंदा हो जाएगा, नहीं लेना चाहिए। तो बड़ी जो है सेवा की भावना से बड़ी चिंता तो लगता है कि बड़ी अच्छी भावना है ना। लेकिन ये सेवा की भावना या इस तरह की चिंता ये भगवान को प्रसन्न नहीं करती है ना, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको उनके आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना, उल्टे तरीके से नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि देखो ये हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं तो भगवान का डायरेक्ट नाम है, है? और ये नाम जो है अशुद्ध हो जाएगा अगर आप लेंगे, है? तो इसलिए ये हरे कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग गॉड बोलते हैं, गॉड गॉड जो है मतलब जनरल नाम है, तो गॉड बोल सकते हो आप तो, लेकिन ये हरे कृष्ण मत बोलो, तो ये बहुत पवित्र नाम है, ये गंदा हो जाएगा गॉड। बल्कि गॉड भी इतना पवित्र है तो हम लोग गॉड भी नहीं बोलते, जीओडी बोलते हैं, जीओडी बोलते हैं। तो प्रभुपाद को भक्तों ने बताया कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गॉड नाम बोल सकते, लेकिन हम तो गॉड भी नहीं बोलते, हम तो जीओडी बोलते हैं, तो वो गंदा हो जाएगा नाम। तो प्रभुपाद ने कहा कि आगे चल करके कहेंगे भी जीओडी भी तो बहुत पवित्र है, तो इसको भी जो है जी निकाल दो, डी निकाल दो और ओ बोलो, केवल ओ का मतलब जीरो, कि भगवान को जीरो बना दो। ओ क्या होता है, जीरो की तरह होता है ना, भगवान को जीरो बना देंगे ये लोग। आगे चल करके बोलेंगे जीओडी भी तो बहुत पवित्र है, है ना, जैसे ये भी नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलो फिर, ओ बोलो और ओ का मतलब जीरो, भगवान को जीरो बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भगवान में शुद्ध करने की असीमित शक्ति है और भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते है ना, तो इसका लाभ हम अगर उठाएं तो इससे भगवान की प्रसन्नता है। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं है ना, तो भगवान की शक्ति को जो है सीमित बता करके पवित्रता को जो है पवित्रता नष्ट हो जाएगी भगवान के नाम की, इस तरह से जब बोलते हैं लोग तो ये जो है ये सेवा नहीं मानी जाती है, बल्कि ये एक अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है ना। तो चेतो दर्पण मार्जनम का ये मतलब है। अच्छा, अब हम इस पर विचार करेंगे कि ये जो सात पद हैं इनका संबंध भक्ति के नौ सोपानों से हैं। सोपान का मतलब सीढ़ियां, तो भक्ति की नौ सीढ़ियां बताई हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। अब ये सात जो पद हैं इस श्लोक के, भक्ति के नौ सोपानों से हम कैसे इनको संबंधित करें, इसके लिए फिर हमने ये विचार किया। अब ये मैं अपनी मतलब बात बता रहा हूँ कि मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की कि भक्ति के नौ सोपानों से इनको कैसे संबंधित किया जाए। तो मैंने फिर क्या विचार किया कि जो शुरू के दो सोपान हैं उनको एक बना दें और अंतिम जो दो सोपान हैं उनको एक बना दें, तो कितने हो जाएंगे, सात ही हो जाएंगे है ना। तो कभी कोई नौ सीढ़ियों को अगर सात सीढ़ियाँ बनानी है तो शुरू की दो सीढ़ियों को एक सीढ़ी बना लें और अंतिम दो सीढ़ियों की एक सीढ़ी बना लें तो सात सीढ़ी हो गई है ना। तो शुरू की श्रद्धा और साधु संघ ये दो सीढ़ियां हैं, इनको एक मान लें। तो ये जो है जो ये जो पहला पद है ये श्रद्धा और साधु संघ ये दोनों के लिए संकेत करता है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस दिशा में हम जो है इस श्लोक की व्याख्या करेंगे कि जो भक्ति के नौ सोपान हैं, नौ सीढ़ियां हैं, उनमें श्रद्धा और साधु संघ की जो दो सीढ़ियां हैं ये दोनों को ये जो है संकेत कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है ये जो भक्ति के नौ सीढ़ियां हैं ये लिखी हुई हैं, तो पहले पद में पहले पद के सामने क्या लिखा है, श्रद्धा और साधु संघ। पहले इसको समझ लीजिए, श्रद्धा और साधु संघ है ना। फिर जो दूसरा पद है उसमें भक्ति का भक्ति की तीसरी सीढ़ी क्या लिखी है, भजन क्रिया। तो दूसरा जो पद है ये भजन क्रिया के लिए है, ठीक है। फिर तीसरा जो पद है इसमें भक्ति की चौथी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी क्या है, अनर्थ निवृत्ति। फिर जो चौथा पद है उसमें भक्ति की पांचवी सीढ़ी लिखी है, कौन सी सीढ़ी है, निष्ठा। फिर जो पांचवा पद है उसमें भक्ति की छठवीं सीढ़ी लिखी है, कौन सा है वो, रुचि। फिर छठवां जो पद है उसमें भक्ति की सातवीं सीढ़ी लिखी है, वो कौन सी है, आसक्ति। फिर सातवां जो पद है उसमें भक्ति की दो सीढ़ियां, आठवीं और नवीं, आप समझ रहे हैं। तो ये सात पदों में भक्ति की नौ सीढ़ियों को मतलब वर्णन किया गया है ना। तो इस तरह से हमने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी समझने की है कि अब ये श्लोक जो है ये तो पहला श्लोक हो गया, और शिक्षाष्टकम के कुल कितने श्लोक हैं, आठ श्लोक हैं। तो बाकी जो सात श्लोक हैं, अब बाकी कितने बजे, सात श्लोक बजे ना, तो सात श्लोक जो है इन्हीं सात चीजों की व्याख्या कर रहे हैं, आप समझे। जो पहले पद की व्याख्या है वो श्लोक संख्या दूसरे में, दूसरे पद की व्याख्या है श्लोक संख्या तीन में, तीसरे पद की व्याख्या श्लोक संख्या चार में, चौथे की श्लोक संख्या पांच में, पांचवें की श्लोक संख्या छह में, छठवें की श्लोक संख्या सात में, और सातवें की श्लोक संख्या आठ में। इस तरह से हम जो है इस हमने इस तरह से पहले से ये बना लिया तरीका कि भाई हमें इस प्रकार से इसकी व्याख्या समझनी है। अब हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है जो पहला पद है चेतो दर्पण मार्जनम, जिसमें भक्ति की नौ दो सीढ़ियां हैं, कौन कौन सी दो सीढ़ियां, श्रद्धा और साधु संघ है ना। तो श्रद्धा मतलब क्या है, जब आप बिना श्रद्धा के हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन, तो पहले श्रद्धा नहीं होती है। कोई व्यक्ति वैसे ही मतलब सुनता है इसको या बोलता है, उच्चारण करता है, तो क्या होता है, चित्त शुद्ध हो जाता है ना। और जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, तो हमारा झुकाव होता है भगवद्गीता के विषय में। भगवद्गीता के विषय में हमारा झुकाव पैदा होता है कि भगवद्गीता में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें जानना चाहिए, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं श्रद्धा। और फिर जैसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो समझने के लिए हमें, इन बातों को समझने के लिए भगवान हमें साधु से मिलाते हैं। तो श्रद्धा और साधु संग, ये दो ऐसी मतलब सीढ़ियां हैं जो एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। कि जैसे श्रद्धा होती है तो आपको साधु से आपका जो है मिलन होता है, क्योंकि तो भगवान रूपा कहते हैं भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में। और जैसे आपके अंदर इच्छा होती है जानने की कि भगवद्गीता का जो विषय है वो क्या है, भगवान कौन है, और हमारा भगवान से क्या संबंध है, तो इस विषय में जैसे आपके अंदर जिज्ञासा होती है तो भगवान किसी साधु से मिला देते हैं। तो श्रद्धा और साधु संग दोनों एक तरह से बहुत जुड़े हुए हैं। तो अब आप देखिए कि अब श्रद्धा और साधु संग को जो है समझाया गया है इस लोक संख्या दूसरे में, है ना। तो हम इस तरह इसको समझेंगे। इस लोक संख्या दूसरे में क्या बताया है कि आपने अपने बहुत से नाम दिए हैं जिनमें अपनी समस्त शक्ति अर्पित कर दी है। आपने अपनी समस्त शक्ति अर्पित कर दी है, आपके नामों में आपके समस्त शक्ति अर्पित की है। तो ये जो ये इसको श्रद्धा कहते हैं, ये श्रद्धा। तो ये श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति बिना श्रद्धा के नाम कीर्तन करता है, नाम जप करता है, और उसकी चेतना शुद्ध होती है, तो वो जो प्रभाव है अपने अंदर महसूस करता है कि मेरा चित्त जो है कितनी जल्दी पवित्र हो गया, कितनी जल्दी विषय के जो विचार हैं वो दूर हो गए, तो उसको जो है नाम की शक्ति का पता चलता है और उसके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है कि भगवान के नाम में मतलब शक्ति है, कुछ विशेष शक्ति है। तो ये है। अच्छा, फिर इसी श्लोक में, दूसरे श्लोक में जो बताया गया है कि आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि आपने अपने ये नाम दिए हैं और इनमें कोई नियम नहीं है, समय कभी कोई बंधन नहीं है, किसी भी समय नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरा अनुराग नहीं है, मेरा अनुराग नहीं है आपके नाम, मेरा अनुराग नहीं है। तो ये क्या है, साधु संग। जैसे आप साधु संग करते हैं और साधु जो भक्त हैं उनमें कीर्तन के प्रति अनुराग देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर अनुराग नहीं है। तो जब तक भक्त नहीं मिलते हैं आपको, भक्तों का संग नहीं मिलता है, तब तक आप अपनी गिरी हुई स्थिति नहीं समझ सकते हैं। आप समझे, तो अपनी गिरी हुई स्थिति तभी पता चलती है जब उन्नत भक्तों का आपको संग मिलता है, साधु संग, है ना। तो साधु संग का ही ये परिणाम है यहां जो समझाया है दूसरे श्लोक में, कि दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं है, है ना। तो साधु संग, तो श्रद्धा और साधु संग, ये दो चीजें इस श्लोक संख्या दूसरे में समझाई गई हैं। तो जब दर्पण से छो तो हमें पता चलता है कि मेरा चेहरा कितना गंदा है, चेतो दर्पण मार्जन, चित्रूपी दर्पण जब स्वच्छ जाता है तो आप अपना चेहरा देखते हैं कि मेरा चेहरा कितना गंदा है, और जो उन्नत भक्त हैं उनके चेहरे कितने साफ हैं। आप समझ रहे हैं, तो साधु संग से जो है क्या होता है कि जब दूसरे जो व्यक्ति हैं जो जिनके चेहरे बिल्कुल साफ हैं, यानी जिनका चित्त साफ है, है ना, और मेरा चित्त कितना गंदा है, तो चित्र रूपी दर्पण में आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना गंदा है, मेरी स्थिति कितनी गिरी हुई है, जो उन्नत भक्त हैं वो कितने ऊंचे उठे हुए हैं। तो ये जो है मतलब साधु संघ का परिणाम है। अच्छा, अब दूसरा पद देखिए। दूसरा पद क्या है इसमें, दूसरा पद भव महादावाग्नि निर्वापणम, है ना। अब इसका अर्थ क्या है, भव का मतलब है संसार, महादावाग्नि संसार के जंगल में महादावानल है, दाव अग्नि, दाव अग्नि जंगल में ही लगती है, दाव अग्नि जंगल में ही लगती है और अपने आप लगती है जंगल में। तो ये संसार पूरा क्या है, जंगल है। अब दूसरे पद में जो वर्णन हुआ है वो इस संसार का वर्णन हुआ कि संसार क्या है, एक जंगल है और जिसमें आग लगी है। और कैसी आग लगी है, बड़ी घोर आग लगी है। अब इसको निर्वापण, इसको शांत करने वाला ये संकीर्तन है। तब ये जो संकीर्तन है श्री कृष्ण संकीर्तन, ये जो है क्या है, जो जंगल की आग को शांत करे। कैसे जंगल की आग शांत होती है, कौन बताएगा? वर्षा के द्वारा, जो बादल बादल। ये संकीर्तन क्या है, ये विशाल बादल है जो कि वन की आग को शांत करता है। तो पहले इस संकीर्तन को बताया गया था गीला वस्त्र जो दर्पण को साफ करे। अब यही जो है श्री कृष्ण संकीर्तन, अब क्या बन गया, ये बादल बन गया जो कि वर्षा करेगा और संसार की आग को, संसार की आग, संसारों के जंगल की आग को शांत करेगा वर्षा के द्वारा। तो ये बादल है ना। अच्छा, अब अग्नि कौन सी है, आग कौन सी है जिसमें हम लोग जल रहे हैं? काम अग्नि, क्रोध अग्नि। ऐसे अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो ये काम अग्नि और क्रोध अग्नि, काम क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, है ना। तो काम अग्नि क्रोध अग्नि से जो है हमारी तुरंत रक्षा होती है। जैसे बादल जैसे वर्षा करे तो जो संसार की जो जंगल की आग है वो शांत होती है ना। तो ये जो है ये दूसरा पद है, काम क्रोध की अग्नि शांत होती है। अच्छा, अब इसमें जो है भक्ति का तीसरी सीढ़ी, भक्ति की तीसरी सीढ़ी का वर्णन हुआ है। भक्ति की तीसरी सीढ़ी क्या है, भजन क्रिया, है ना। तो भजन क्रिया, तो इससे क्या है कि हम भजन क्रिया जब आरंभ करते हैं, है ना, तो भजन क्रिया हम जब आरंभ करते हैं तो हमारे काम अग्नि क्रोध अग्नि तुरंत शांत होती है ना। अब भजन क्रिया का वर्णन श्लोक संख्या कितने में, तीसरे में। अब श्लोक संख्या तीसरे में वो वर्णन हुआ है भजन क्रिया का। तो भजन क्रिया का वर्णन किस तरह से हुआ है कि आपको भजन करना है कैसे, तिनके से भी ज्यादा नीच बन करके और वृक्ष से ज्यादा सहनशील होकर के, है ना। तो आपको नीच बनना है, बहुत विनम्र बनना है, तिनके से भी ज्यादा विनम्र बनना है, है ना। अमानिना मतलब आपको अपना सम्मान नहीं कहना, है ना। और वृक्ष से ज्यादा सहनशील, तो वृक्ष ज्यादा सहनशील का मतलब है कि दूसरे वैष्णव उन्नत वैष्णवों के द्वारा अगर कभी कठोर व्यवहार हो तो हमें क्या करना है, सहन करना है। वृक्ष कम से कम वृक्ष की तरह समझ लो, वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना या वृक्ष की तरह सहनशील होना, अभी इस विषय में हम नहीं जा रहे कि वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना है या वृक्ष की तरह सहनशील होना है। तिनके की तरह विनम्र आप बनिए, तिनके से भी ज्यादा विनम्र होने की बात बताई गई है, तभी इस विषय में हम नहीं जा रहे कि तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना या तिनके की तरह। तो तिनके की तरह भी अगर आप अपने को समझते हैं है? कि अपना कुछ महत्व तो नहीं है, तिनके का कुछ भी महत्व तो नहीं होता है ना, है? और सबके पैरों के नीचे होता है, तो अपनी स्थिति हम तिनके के समान मान लें और सहनशीलता में तिनका नहीं, तिनका सहनशील नहीं होता, थोड़ी सी फूंक मारो तो उड़ जाता है, लेकिन पेड़ वृक्ष जो है सहन करता है, है? जाड़ा गर्मी बरसात है ना, ये सब पेड़ सहन करता है। तो सहन करने में वृक्ष की तरह है ना। तो ये जो बातें हैं ये भजन क्रिया की हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हमने की। अब तीसरा पद क्या है, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेया, श्रेया का मतलब है मंगल, शुभ है। श्रेया कैरव, कैरव का मतलब है एक ऐसा कमल जो सफेद रंग का होता है और चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, उसको कहते हैं कैरव, है ना। तो ये विशेष कमल होता है। तो लाल कमल जो होते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाते हैं, है ना। ये पता होना चाहिए, ये एक मैकेनिज्म है, सूर्य के प्रकाश में कमल जो है खिल जाता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है तो कमल बंद हो जाता है ना, ये नियम है कमल का। और जो सफेद कमल होता है ना, उसको कैरव बोलते हैं। वो क्या होता है, रात्रि में जब चंद्रमा का प्रकाश होता है तो खिलता है, और जब चंद्रमा का प्रकाश चला जाता है तो बंद हो जाता है ना। तो ये अब ये श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या हो गया, चंद्रमा है। अब यहां पर चंद्रमा बताया कि ये चंद्रमा है, और हमारा जो मंगल शुभ है वो कैरव फूल की तरह है ना, तो बंद पड़ा हुआ है। जब तक चंद्रमा की चांद चंद्रिका ना आए, चंद्रिका का मतलब प्रकाश, चंद्रिका का मतलब प्रकाश, तो चंद्रिका चंद्रमा का प्रकाश वितरणम मैंने वितरण करता है, तो चंद्रमा ही तो करता है चंद्रिका का वितरण। चंद्रमा के बिना चंद्रिका कैसे आएगी है ना, या सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश कहां से आएगा। अरे चंद्रमा का प्रकाश कैसे आएगा चंद्रमा के बिना। तो ये श्रीकृष्ण संकीर्तनम क्या है, चंद्रमा है, और ये चंद्रिका वितरण करता है, है? किसके लिए, आपके मंगल शुभ जो सफेद कमल है, तो ये जो है उसको खिलाने के लिए ये क्या है, चंद्रिका का वितरण करता है। तो ये चंद्रमा है श्री कृष्ण संकीर्तन, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम है ना। तो ये जो है चंद्रमा। अच्छा, अब इसमें जो है ये संबंध भक्ति के चौथी सीढ़ी से है। चौथी सीढ़ी क्या है भक्ति की, अनर्थ निवृत्ति है ना। अनर्थ का मतलब अमंगल अशुभ, तो अशुभ दूर करता है और शुभ प्रदान करता है, तो ये उसी से संबंधित हो गया ना, है ना। तो जब आपके जो है शुभ जो है, अगर शुभों का उदय होता है, मंगल का उदय होता है, इसके बाद अमंगल दूर होते हैं है ना, अनर्थ दूर होते हैं है ना। तो ये जो है मतलब उसी से जुड़ा हुआ है, अनर्थ निवृत्ति है ना। अब वो अनर्थ निवृत्ति होती है, है इससे। तो अब ये श्लोक इसमें कौन सा श्लोक इससे संबंधित है, चौथा है ना। तो जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक क्या है, न धनम न जनम न सुंदरीम गविताम कामये, धन जन सुंदरी है और विद्वत्ता मुझे नहीं चाहिए। तो ये अनर्थ है, हमारे अंदर जो अनर्थ है वो ये चीजें हैं है? कि हम चाहते हैं धन की प्राप्ति करना, अनुयायियों या सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, या सुंदरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये अनर्थ है न काम है ये है? तो जब मंगल की प्राप्ति होती है, है अनर्थ दूर होते हैं, तो हमारे अंदर ये कामना दूर हो जाती है, धन जन सुंदरी और विद्वत्ता की जो इच्छा है, प्राप्त करने की इच्छा है, तो हमारी जो है ये दूर हो जाती है, और मंगल की प्राप्ति होती है ना। तो मंगल की प्राप्ति किस प्रकार से, कि हमारी इच्छा होती है जन्म जन्म में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, हम जन्म न जन्म। तो जब आपका जो है जो मंगल रूपी जो कैरव है ये खिल जाता है, तो आपके अंदर फिर ये इच्छा पैदा होती है। असली अर्थ जीवन का जो असली अर्थ है वो क्या है, कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, तो ये अर्थ है। अनर्थ दूर होता है धन जन कविता की कामना, ये दूर होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, और अर्थ की प्राप्ति होती है वो क्या है, विजय कामना कि कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति जन्म जन्म प्राप्त हो, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से इससे संबंधित है। अच्छा, अब चौथा पद क्या है, विद्यावधो जीवनम है ना। तो देखिए पहले पद में श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है, गीला वस्त्र है जो चित्र रूप दर्पण को स्वच्छ करता है। दूसरे पद में श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है, बादल है जो कि संसार रूपी जंगल की आग को शांत करता है। और तीसरे पद में ये श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है, चंद्रमा है जो कि मंगल रूपी कैरव को खिलाने के लिए चंद्रिका का वितरण करता है। अब चौथा जो है ये क्या है, विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु, वधु समझते हो, वधु माने पत्नी, तो विद्या रूपी पत्नी को जीवन देने वाला, तो पत्नी को जीवन देने वाला कौन होता है, पति होता है। तो विद्या रूपी पत्नी को जीवन देने वाला ये क्या है, पति है। तो जब पति आए पत्नी के सामने, जब पति आता है तो वो प्रसन्न होती है। अच्छा पति दूर चला जाए, घर छोड़ करके दूर चला जाए, तो फिर पत्नी प्रसन्न नहीं होती है। तो ये विधि है कि जो कुल वधु होती है वो कभी भी पति के मतलब दूर होने पर वो कभी भी हंसती नहीं है, अपना श्रृंगार नहीं करती है, अच्छा भोजन नहीं, स्वास्थ्य से भोजन नहीं खाती है, है? और इधर उधर कहीं जाती नहीं है, लोगों से मिलने जुलने नहीं जाती है, है? कभी श्रृंगार नहीं करती है, है ना। तो ये वधु का ही लक्षण है। तो जो विद्यारूपी वधु है, है तो ये जो है हमारी क्या है, उदास पड़ी हुई है हमारे अंदर, हमारे अंदर उदास पड़ी हुई है विद्यारूपी वधु। और जैसे श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये पति आता है तो बहुत समय के बाद पति आया तो पत्नी फिर क्या करती है, अपना खूब श्रृंगार करती है और जो है अपना सब प्रकार से शोभायमान हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो विद्या रूपी वधु को ये जीवन देने वाला ये पति है विद्या, है ना। तो ये विद्या देवी का पति है, है? विद्या वधु जीवनम, है ना। अच्छा अब इसका हमने संबंध जोड़ा है भक्ति के पांचवी सीढ़ी से। पांचवी सीढ़ी कौन सी है, निष्ठा, है ना। तो ये निष्ठा, जब आपके अंदर वो ज्ञान की निष्ठा प्राप्त होती है, ये श्रद्धा आ जाती है ना, तो ज्ञान की निष्ठा है ये, तो वो प्राप्त होती है निष्ठा, है ना, स्थिर विद्या की प्राप्ति निष्ठा। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थित ही, जो दैवी संपत्तियों का वर्णन भगवान ने किया है, तो ज्ञान योग व्यवस्थित ही, तो ज्ञान योग की स्थिरता हो, ज्ञान में स्थिरता हो, है ना। अच्छा अब इसका इसकी व्याख्या हुई है इस श्लोक संख्या कितने में, पांचवें में, है ना। तो हम क्रम से देखते जाते हैं, इस श्लोक संख्या पांच में जो है क्या बताया गया है कि पतितम माम इसमें भवामुद हो। तो जब आपको विद्या की प्राप्ति होती है तो आपको अपनी स्थिति का पता चलता है, आत्म साक्षात्कार होता है कि आप वास्तव में कहां पर हैं, पतितम विस्मय भवामुद हो, विस्तम भाव समुद्र में आप गिरे हुए हैं, आप सुखी नहीं हैं। तो जब आपको स्थिर ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कितने संकट में हैं। तो ये जो है आपका आत्मज्ञान जब जागृत होता है, विद्या वधु जब खिलती है, तो विद्या रूपी प्रसन्न हो गई, खिल गई, तो आपको जो है अपनी स्थिति का पता चलता है कि आप कितने संकट की स्थिति में हैं, आप भव समुद्र में गिरे हुए हैं। पतितम विस्मय भवामुदौ है, और कृपया तो पाद पंकज धूल चयेन्द्र, तो आप अपने चरण कमलों की धूल का कण बना लीजिए। तो ये जीवन का लक्ष्य है कि हमें कृष्ण के चरणों की सेवा करनी है। तो ये जो है विद्या का मतलब ये होता है, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है कि आप कितनी संकट की स्थिति में हैं और आपको लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है कि कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना है। तो ये विद्या वधु जीवनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तन आपकी विद्या रूपी वधु को जीवन प्रदान करता है, है ना। तो आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, ये जो है मतलब पता चलता है। तो ये विद्या वधु जीवनम है कि अपने चरणों की सेवा मुझे दीजिए, अपने चरण कमल की धूल का कण बना लीजिए, है ना। ये है। अब इसके बाद है क्या है, पांचवा, पांचवा पद है आनंदामुदी वर्धनम। अब आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाला, तो समुद्र को कौन बढ़ाता है, पूर्णिमा का चंद्रमा। आज पूर्णिमा है देखो आज संयोग ऐसा हुआ, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है ये समुद्र को बढ़ाता है। तो आनंद के समुद्र को बढ़ाता है कौन, श्री कृष्ण संकीर्तन, है। तो पूर्णिमा का चंद्रमा तो मतलब क्या है कि आज आज रहेगा फिर घटने लगेगा, लेकिन ये श्री कृष्ण संकीर्तनम ऐसा पूर्णिमा का चंद्रमा है जो कभी घटता नहीं है और समुद्र बढ़ता जाता है, आनंद के समुद्र को बढ़ाता जाता है, है ना। तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा है। अच्छा आप इसका संबंध हमने भक्ति के कौन से सीढ़ी से जोड़ा है, रुचि से। तो रुचि क्योंकि आनंद के समुद्र को बढ़ाता है, इसका मतलब रुचि, है ना। तो रुचि का मतलब क्या होता है कि आपको अरुचि नहीं होती है, आप करते हैं कीर्तन करते हैं, आपकी अरुचि नहीं होती है कि कितनी देर हो गई आप तो जो है ना बोर हो गए, है ना। तो आप बोर हो जाते हैं ना, कथा सुनने में क्लास लंबा होता है तो बोर हो जाते हैं, है ना, कीर्तन करने में बोर हो जाते हैं, है ना, या बोर नहीं होते, अरुचि नहीं होती है, तो रुचि है ना, तो इसको कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, जैसे बताए थे ना स्वादु स्वादु पदे पदे, तो पद पद में स्वाद मिलता है ना। अब स्टोर संख्या इसमें छह से छह में व्याख्या हुई है, स्टोर संख्या छह में व्याख्या हुई है। जब आपके अंदर मतलब जो होती है स्थिति रुचि की, तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर इच्छा होती है क्या, नयनम गलत सुधारया, कि नेत्र जो है, नेत्र जो है, नेत्र में आंसुओं की धारा बहे, नयनम गलत सुधारया, तो मतलब ये है कि शरीर का जो आनंद, हृदय का आनंद है, नेत्रों से बाहर आए और शरीर पुलकित हो जाए, आनंद जब भर जाता है तो रोम मोम जो है, रोम को जगह नहीं मिलती तो रोम बाहर निकल आते हैं शरीर के रोम, है ना, तो ये आनंद आमुदी वर्धन, यही मतलब हुआ ना, आनंद के समुद्र की इतनी मतलब वृद्धि हुई है शरीर के अंदर भी, वो आनंद इतना बढ़ गया है ना, कि क्या होता है कि शरीर के रोए मतलब खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और हृदय में भी आनंद बढ़ता है तो वो आनंद आंसुओं के द्वारा बाहर निकलता है नेत्रों से, तो ये जो है मतलब स्थिति है, तो ये स्थिति है श्लोक संख्या छह में जो समझाया गया। अच्छा अब हम कहाँ पर आएंगे, छठवां, छठवां पद है, छठवां पद क्या है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, है ना, प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, तो पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, ये श्री कृष्ण संकीर्तन पद पद पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है, तो पूर्ण अमृत का आस्वादन किसने कराया, किसको कराया, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि किसने अमृत का आस्वादन कराया और किसको कराया, बांटा अमृत, किसने बांटा था अमृत, मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, है ना, तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, है ना, तो पूर्ण अमृत आस्वादन कराता है, तो ये श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है, मोहिनी अवतार का भी काम कर रहा है, तो अपने भक्तों को जो है पूर्ण अमृत का आस्वादन कराया मोहिनी देवी ने, असुरों को जो है असुरों को उसने जो है भ्रमित किया, धोखा दिया, है ना, और अपने भक्तों को पूर्ण अमृत का आस्वादन कराया, तो ये जो है श्री कृष्ण संकीर्तनम क्या है, मोहिनी अवतार का काम करता है, है ना, कि अपने भक्तों को पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। अच्छा अब इसका जो है संबंध भक्ति के सातवें सीढ़ी से, सातवीं सीढ़ी क्या है, आसक्ति, है ना, तो पूर्ण अमृत का आस्वादन जब होता है तो ये क्या है, आसक्ति का ये लक्षण है, जैसे भ्रमर जो है कमल में रस प्राप्त करता है, आसक्त हो जाता है, है ना। अब श्लोक संख्या सात में इसका वर्णन हुआ है, श्लोक संख्या सात में क्या वर्णन हुआ है कि अगर छोड़ दें कृष्ण का अगर विरह हो तो युगाए तम निमेश, एक निमेश काल युग के बराबर लगता है, तो जहां पूर्ण अमृत का आस्वादन हो और फिर ना मिले तो वो एक निमेश काल युग के बराबर लगता है, तो ये आसक्ति का धरातल है, पूर्ण अमृत का आस्वादन जब होगा तो व्यक्ति आसक्त हो जाएगा तो वह छोड़ना नहीं चाहेगा, है ना, तो रुचि के धरातल पर तो अरुचि नहीं हो रही है, लेकिन अगर फिर भी बंद कर दिया तो कोई शिकायत नहीं होती है, लेकिन यहां तो बड़ी शिकायत है, आसक्ति के धरातल पर इतनी शिकायत है कि अगर एक सेकंड के लिए भी अगर हम भूल गए कृष्ण को, कृष्ण कथा नहीं हुई, कृष्ण स्मरण नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, एक युग के बराबर वो बन जाता है, युगाई तम ने में शेण है, है ना, और पूरा जगत क्या हो गया, शून्य बन गया, तो भक्त लोग भी शून्यवादी हैं, भक्त लोग भी शून्यवादी हैं, ये आसक्ति के धरातल पर वो पूरा जगत उनको शून्य दिखाई पड़ता है, कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य है, शून्यवादी तो कृष्ण को ही शून्य बनाते हैं, शून्यवादी तो कृष्ण को ही शून्य बनाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो पूरे जगत को शून्य मानते हैं, अगर कृष्ण का विरह होता है, कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो पूरा जगत शून्य है, तो ये आसक्ति का, आसक्ति की व्याख्या है ये, है ना। अब सातवां जो पद है वो क्या है, सर्व आत्म स्नपनम, यानी संपूर्ण आत्मा को स्नान कराने वाला, संपूर्ण आत्मा को स्नान कराने वाला, है ना, मतलब पूर्ण शुद्धि, जैसे अनर्थ निवृत्ति का धरातल है, अनर्थ दूर होते हैं, लेकिन तो भी प्राय अनर्थ दूर होते हैं, फिर उसके आगे जो निवृत्ति का धरातल है नहीं निष्ठा, निष्ठा में और ज्यादा अनर्थ दूर होते हैं, फिर उसके आगे रुचि के धाता पर और ज्यादा अनर्थ दूर होते हैं, फिर आगे आसक्ति में और अनर्थ दूर होते हैं, है ना। लेकिन फिर जो है भाव के धरातल पर और ज्यादा अनर्थ दूर होते हैं, और प्रेम के धरातल पर तो पूरी तरह से अनर्थ दूर हो जाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं सर्व आत्म स्नपनम, है कि संपूर्ण आत्मा को स्नान इसने करा दिया, शुद्ध कर दिया, अब अनर्थ एक भी नहीं रहा, अब गिरने की संभावना नहीं है। तो प्रेम के धरातल पर व्यक्ति की जो है गिरने की संभावना नहीं होती है। तो ये है सर्व आत्म स्नपनम, है ना। तो यहाँ संपूर्ण आत्मा को स्नान कराने वाला ये श्रीकृष्ण संकीर्तन है। तो श्रीकृष्ण संकीर्तन को अब यहाँ क्या बनाया गया, क्या चीज है, आपके आप शरीर से स्नान करते हैं तो वो क्या होता है, जल होता है ना, शुद्ध जल होता है। तो ये श्रीकृष्ण संकीर्तन क्या है, वो शुद्ध जल है जो आपकी आत्मा को पूरी तरह से स्नान करा देता है, शुद्ध कर देता है। तो यहां पर शुद्ध जल से तुलना की गई है श्रीकृष्ण संकीर्तन की। तो ये हमने इसको समझाया क्या कि भक्ति के आठवां और नवा ये दोनों सीढ़ियां इसमें आ गए, भाव और प्रेम की दशा, है ना। तो भाव और प्रेम की दशा जो है मतलब बहुत निकट होती है एक दूसरे के। तो श्लोक संख्या आठ में वो प्रेम का लक्षण है, वो प्रेम का लक्षण है श्लोक संख्या आठ में। क्या कि मुझे दर्शन ना दें तो फिर मेरे प्राणनाथ हैं, है? तो भाव की दशा में कभी दर्शन देते हैं और कभी दर्शन नहीं देते हैं। तो जो शुरू का आधा श्लोक है दो पंक्तियां, उसने कहा यह कहा है कि कृष्ण दर्शन देते हैं, कभी कभी कृष्ण दर्शन नहीं देते हैं। तो भाव की दशा में ऐसा होता है कि कृष्ण कभी दर्शन देते हैं, कभी दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन प्रेम की दशा में कृष्ण के साथ अंतरंग संबंध हो जाता है, जिसमें संगति प्राप्त होती है कृष्ण की, और उसमें कृष्ण की निंदा भी कोई व्यक्ति कर सकता है। तो दूसरे जो मतलब जो दूसरा आधा श्लोक है, अगला आधा श्लोक है, इन दो पंक्तियां उनमें लंपट कहा है कृष्ण को, तो कृष्ण की निंदा की है, यथा तथा यथा तो लंपट हो, है ना। तो प्रेम के धरातल पर ही कोई व्यक्ति कृष्ण की निंदा कर सकता है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो वो लंपट है, वो जैसे भी आचरण करें, ये मेरे प्राणनाथ वही हैं, वही मेरे प्राणनाथ हैं। तो ये प्रेम का धरातल है। तो इस तरह से ये जो है सात जो पद हैं, इसमें भक्ति के नौ सीढ़ियों का वर्णन हुआ है, और वही जो है जो सात अगले श्लोक हैं उनको समझाया गया है, उनमें इन स्थितियों को समझाया गया है। तो हमने इस प्रकार की व्याख्या की है। अब इस संबंध में जब मैंने कुछ लिखा था तो कुछ घटना हुई थी, तो वो जो है प्रद्युम्न प्रिया प्रभु जो है पढ़ के सुनाएंगे कि मतलब मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि मैंने इस तरह से तो व्याख्या की है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं लेखक हैं तो उनके अनुसार हो सकता है कि मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, गलत व्याख्या कर रहा हूँ, कुछ हो सकता है। तो मुझे बड़ी चिंता हुई थी, तो उसमें कुछ ऐसी घटना घटी थी, तो वो जो है लिखित रूप में कुछ जो है प्रद्युम्न प्रिया प्रभु पढ़ के सुनाएंगे। माइक है या ये माइक दे दें, ये वाला माइक दे दें, निकाल दें।
बताने जा रहा हूँ सन 1988 की इसकी हेडिंग है श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसादी माला प्रभु जी को प्राप्त हुई। प्रभु जी ने शिक्षाष्टकम के प्रथम श्लोक पर व्याख्या लिखी है। हेडिंग यह बात सन 1988 की है। उस समय प्रभु जी के श्री लोकनाथ स्वामी के साथ व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे बने हुए थे। एक बार किसी सज्जन ने श्री लोकनाथ गोस्वामी को बनाराम पिछले वर्ष छपी हुई कोई स्मारिका दिखलाई तथा प्रार्थना की कि वे इस वर्ष छपने वाली स्मारिका में छापने के लिए कुछ सामग्री लिख कर दें। उस समय चूंकि प्रभु जी महाराज के निकट ही उपस्थित थे अतः महाराज यह कार्य प्रभु जी को ही सौंप दिया। महाराज ने यह कार्य प्रभु जी को ही सौंप दिया। अब प्रभु जी ने विचार किया कि वे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक की व्याख्या लिख कर देंगे। जिस समय प्रभु जी ने श्लोक की व्याख्या लिख कर पूरी की उस समय उनके मन में एक चिंता उत्पन्न हुई कि यद्यपि प्रभु जी ने इस श्लोक की व्याख्या अपने ढंग से की है परंतु इस श्लोक के रचयिता श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या दूसरे प्रकार की हो सकती है और हो सकता है कि प्रभु जी की इस व्याख्या से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न ना हों। उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य हुआ। मंदिर में उस समय मिट्टी के बने हुए श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के दो बड़े बड़े सुंदर विग्रह रहते थे जिन्हें प्रतिदिन एक नई माला पहनाई जाती थी। उस समय महासिंह नाम के एक भक्त प्रभु जी के सामने आए तथा उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गले की माला लाकर प्रभु जी के गले में पहना दी। अब देखिए कि प्रभु जी से पता क्या था, प्रभु जी बता रहे थे कि पहले कभी नहीं आए थे, मैं भी आश्चर्यचकित था कि किस तरह से ऐसा हुआ। उन्होंने का कमरा दूसरा था, वो अल्टर से आके आता तो तब एक नई माला पहनाई जा सॉरी मंदिर में उस समय मिट्टी के बने हुए श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के दो बड़े बड़े सुंदर विग्रह रहते थे जिन्हें प्रतिदिन एक नई माला पहनाई जाती थी। उस समय महासिंह नाम के एक भक्त प्रभु जी के सामने आए तथा उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के गले की माला लाकर प्रभु जी के गले में पहना दी। अब देखिए कि यह कितने आश्चर्य की बात है। महासिंह प्रभु को कुछ भी नहीं पता था कि प्रभु जी क्या लिख रहे हैं तथा लिखते हुए क्या सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि ऐसा भी कोई नियम नहीं था कि वे मंदिर से कोई माला लाकर किसी को पहनाएं। यह बात तो केवल प्रभु जी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ही जानते थे कि प्रभु जी क्या लिख रहे हैं तथा लिखते हुए क्या सोच रहे हैं। इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्ट किया कि प्रभु जी ने श्लोक की जो भी व्याख्या लिखी है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित है। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को समझकर प्रभु जी को आपार विस्मय तथा हर्ष हुआ। हरे एक और है इसी से संबंधित है कि प्रभु जी जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम रोज गाते हैं उसके पीछे क्या रहस्य है। तो प्रभु जी की श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का गान करने की इच्छा हुई हेडिंग है। यह बात सन 1978 के ग्रीष्म ऋतु के किसी दिवस की है कि प्रभु जी को गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई कल्याण नामक एक मासिक पत्रिका प्राप्त हुई। उस पत्रिका को खोलने पर एक स्थान पर प्रभु जी ने देखा कि उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के संस्कृत में 8 श्लोक तथा हिंदी में उनके अनुवाद लिखे हुए हैं। चूंकि प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित 45 पृष्ठों में विस्तृत विवरण पढ़ लिया था अतः प्रभु जी की श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्रद्धा अत्यंत तीव्र हो चुकी थी। जैसे ही प्रभु जी ने अत्यंत सुंदर अक्षरों में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा रचित शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक पढ़े उस समय प्रभु जी को ऐसा लगा कि इन श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात उपस्थित हैं तथा यदि प्रभु जी को ऐसा अवसर प्राप्त हो कि प्रभु जी प्रतिदिन नियम पूर्वक इन 8 श्लोकों का अत्यंत मधुर स्वर में गान करें तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त हो सकती है। यह इच्छा प्रभु जी के मन में कुछ समय तक अत्यंत तीव्र रूप से बनी रही परंतु समय के प्रभाव में यह इच्छा लुप्त हो गई। फिर सन 1983 में कुछ ऐसे कारण बने कि प्रभु जी अपना घर छोड़कर जीवन भर के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में शामिल हो गए। अब सन 1987 की यह बात है कि जिस समय प्रभु जी इस्कॉन के दिल्ली केंद्र में रह रहे थे उस समय यह नियम बनाया गया कि प्रतिदिन मंगल आरती के बाद मंदिर में शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों का पाठ किया जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस समय यह नियम बनाया गया था उस समय इस बात पर विचार नहीं किया गया था कि कौन भक्त शिक्षाष्टकम के श्लोकों को लिखित रूप में बांटेगा तथा किस भक्त के स्वर के साथ साथ सभी भक्त शिक्षाष्टकम का गान करेंगे। उस समय प्रभु जी के मन में विचार आया कि शायद उनके अतिरिक्त कोई भी ऐसा भक्त नहीं है जो इस बात की चिंता करेगा कि शिक्षाष्टकम के श्लोकों श्लोक लिखित रूप में बांटे जाएं तथा सभी लोग मिलकर शिक्षाष्टकम का पाठ करें। अतः प्रभु जी ने स्वयं अपने प्रयास के द्वारा शिक्षाष्टकम के पर्चे तैयार करवाए। अब अगले दिन प्रभु जी ने वे पर्चे बांटे तथा शिक्षाष्टकम का पाठ हुआ तथा यह बात सत्य ही थी कि यदि प्रभु जी ने वे पर्चे नहीं बांटे होते तो शिक्षाष्टकम का पाठ नहीं होता। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी हुई कि किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि शिक्षाष्टकम के श्लोकों का किस स्वर में पाठ करना है। अतः यह बात पहले से ही निश्चित थी कि जिस स्वर में प्रभु जी पाठ करेंगे उसी स्वर में सभी लोग अपना स्वर मिलाकर पाठ करेंगे। परंतु कभी कभी शिक्षाष्टकम के पाठ में एक बाधा आती थी, क्योंकि प्रभु जी तथा सभी भक्त शिक्षाष्टकम का पाठ माइक के बिना करते थे। अतः कभी कभी कोई भक्त अपनी ऊंची आवाज में शिक्षाष्टकम का पाठ किसी दूसरे स्वर में करने लगता था तथा इस प्रकार पाठ में बाधा उत्पन्न होती थी। इस बाधा के विषय में भी किसी भक्त ने कोई विचार नहीं किया कि जिस भक्त का स्वर उचित हो उसे माइक दिया जाए तथा उसी के स्वर में स्वर मिलाकर सभी लोग शिक्षाष्टकम का पाठ करें। अब एक दिन प्रभु जी ने साहस करके बिना किसी की अनुमति लिए शिक्षाष्टकम का पाठ माइक पर गाना शुरू किया। उस समय भी किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया तथा अब किसी प्रकार की बाधा की संभावना नहीं थी कि कोई अन्य भक्त अपने अलग स्वर में शिक्षाष्टकम का पाठ कर सकेगा। इस प्रकार शिक्षाष्टकम का पाठ तब से अभी तक चल रहा है तथा प्रभु जी के द्वारा माइक पर पाठ होने के कारण सभी भक्त उन्हीं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर पाठ करते हैं। इस समय प्रभु जी याद करते हैं कि चूंकि एक बार उन्होंने शिक्षाष्टकम का मधुर स्वर में नियमित पाठ करने की तीव्र इच्छा की थी, उसी इच्छा के फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रभु जी को शिक्षाष्टकम का माइक पर पाठ करने का प्रतिदिन अवसर प्राप्त होता है। कई बार ऐसा भी सोचा गया कि अब अलग अलग भक्त करेंगे पाठ, पर क्योंकि महाप्रभु की इच्छा है, प्रभु जी की इच्छा थी और भगवान पूरी कर रहे हैं, तो अभी तक भी चल रहा है, वो हो नहीं पाया। और अभी भी मुझे एक आश्चर्य हुआ कि जब गाड़ी में आ रहे थे, जब महादावाग्नि की जो व्याख्या करी ना, तो हमारी गाड़ी में जो सीढ़ी चल रही थी उसमें यही कथा आई थी कि धृतराष्ट्र जो है अग्नि में प्रवेश किए बहुत विस्तृत रूप से। अभी जब यहाँ पे आने के बाद आश्चर्य लगा कि अग्नि का तो कथा चली रही थी, अग्नि की, कि अग्नि में किस प्रकार से प्रवेश।
कोई प्रश्न है किसी का, कोई चर्चा आप लोगों की ओर से? हाँ, सबका बताया। सबसे पहले मैं गीला वस्त्र है, और दूसरा बादल है, और तीसरे में चंद्रमा है, चौथे में विद्या का पति विद्यापति समझे, और पांचवें में पूर्ण चंद्रमा, और छठवें में मोहिनी अवतार, और सातवें में दिव्य जल में शुद्ध जल। ठीक है, और कुछ? धन्यवाद। अच्छा, आपका प्रश्न हूँ जी अच्छा, आपका प्रश्न है? नहीं, नवधा भक्ति अलग है। ये भक्ति के अंदर जो 9 सोपान हैं ये क्रम से एक के ऊपर एक के आगे एक होते हैं, एक के बाद एक होते हैं। ये सोपान है, सीढ़ियाँ हैं नौ की, जो कि मतलब ऊपर उठते जाते हैं भक्ति में, तो हम इस तरह से प्राप्त करते हैं परिणाम। ये सोपान अलग है। अनवधा भक्ति जो हम लोग जिसको स्वीकार करते हैं, वो श्रीमद् भागवत में वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई। यहाँ पर नवधा भक्ति की चर्चा नहीं हुई, यहाँ पर भक्ति के नौ सीढ़ियों की चर्चा हुई है, श्रद्धा से प्रेम तक की प्राप्ति। ठीक है ना। नहीं, ये जो नौ प्रकार की भक्ति है नवधा भक्ति, उसमें तो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की भक्ति में लग जाए और 24 घंटे वो एक प्रकार की भक्ति में लगा रहे, या दो प्रकार की भक्ति में, या नौ की नौ भक्तियां करे, 24 घंटे लगा रहे, तो वो जो है वो सिद्धांत है उसमें। लेकिन ये सिद्धांत इसका है भक्ति में आगे बढ़ने का। ठीक है ना। हाँ, आपका प्रश्न। हाँ, ये जो है इनको हम लीला के रूप में हम स्वीकार करें तो इनको हमें सुनना है, सुनाना है, स्मरण करना है। आज ये दिन है तो आज ये घटना हुई थी, तो एक तरीका तो ये है कि ये घटना हुई थी और हमारे दिमाग में इसका जो है महत्व तो होना चाहिए कि ये दिन जो है इस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आज के दिन जो है ये घटना हुई है ना। बाकी शिक्षा और कुछ मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो अलग बात है ना, लेकिन घटना का महत्व है क्योंकि ये मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई। प्रभुपाद के जीवन में घटना हुई है ना, या विश्वरूप के जीवन में घटना हुई, तो बाकी जो है कोई शिक्षा हम प्राप्त करें ना करें वो अलग बात है। तो सात साधु आचार्य तीनों के सम्मत होना, तब कहीं हम कोई शिक्षा अपने जीवन में निश्चित कर सकते हैं कि भाई हमें ये करना है। ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, 11 दिन का है ना, 5 तारीख से 15 तक, 11 तारीख का है ये पवित्र नाम का दिवस। तो इसमें ये है कि अधिक से अधिक लोगों को ये नाम बताया जाए, नाम की महिमा बताई जाए, और अधिक से अधिक सड़कों में कीर्तन किया जाए, मंदिर में कीर्तन किया जाए, या व्यक्तिगत जप किया जाए माला पर। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों से शुरू करवा सकते हैं, जो नहीं करते हैं वो कम से कम एक माला जप करें, और जो करते हैं वो और जप करें, एक्स्ट्रा जप करें। जो 16 माला जप कर रहे हैं उनसे भी आप लिखवा सकते हैं कितना जप करेंगे, उनकी भी जो है माला की संख्या आप जो है नोट कर सकते हैं कि आपने कितने लोगों से कितनी माला जप करवाई, तो ये भी आपका एक स्कोर है। तो वो स्कोर भी जो है मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं कितने समय में आपने कितने लोगों को जो है जप करने के लिए जोड़ा। ठीक है ना। धन्यवाद। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधे रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। गौणकाय की जय। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हो।